अब हम लोग चर्चा करेंगे तीन प्रकार की तपस्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सभी भक्तों के जीवन में तप होना चाहिए। तो ये तीन प्रकार की जो तपस्या है, 14, 15, 16 और 17, ये सात्विक तपस्या है, और इससे हमारे जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होती है। और जब सत्वगुण की वृद्धि होगी तो भगवान की भक्ति अच्छी लगती है, इसलिए हमारे लिए अच्छा है इसको हम सीखें। आज पहली श्लोक, पहला जो श्लोक है उसमें शरीर की तपस्या के बारे में बोला जाएगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। ये बहुत स्पष्ट है, इसमें जो टीका है वही प्रभुपाद जी ने दिया, तो उसको हम पढ़ लेते हैं सीधे सीधे। देव मतलब है भगवान परमेश्वर, देवता का मतलब, देव मतलब देवता भी हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं भगवान कृष्ण परमेश्वर। द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु का अर्थ है गुरु, प्राज्ञ मतलब पूज्य व्यक्तियों को, जैसे कि माता पिता भी, पूजनम इनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी उनको सम्मान देना चाहिए, जैसे हम लोग रोज गुरु पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी ने इसको इसमें इंक्लूड किया है, उसको हमें नॉट सो इम्पोर्टेंट नहीं मानने लगे, बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, देख लेना चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं आचार्य गुरु की पूजा करना ये बहुत जरूरी है। और कुछ लोग नहीं आ रहे थे तो प्रभुपाद जी ने बोला दे आर ड्रिंकिंग द पॉइजन फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ पूतना, पूतना के स्तन से जो जहर आ रहा है वह वो पी रहे हैं जो लोग इस प्रकार से गुरु पूजा में नहीं आ रहे। हाँ, जिसकी सेवा है वो एक अलग बात है, लेकिन जान बूझ करके नहीं आना उचित नहीं है, ये प्रभुपाद जी के प्रति अनादर है। माइक बोलिए, आप माइक पकड़ में रखा है।
हल्दर महाराज जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी सभी को निर्देश दिए गुरु पूजा में उपस्थित होना है।
हाँ, अगर किसी को कुकिंग कर रहा है तो कैसे आएगा, लेकिन मतलब भावना ये है कि उस टाइम कुछ फालतू का काम नहीं निकालना चाहिए। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बलराम भाव में बैठे हुए थे, तो एक्चुअली गुरु पूजा ओवर भी हो चुकी थी। मैं महाराज से कुछ प्रश्न करने के लिए आया तो महाराज डांटे मेरे को, कहते कि नहीं ये अपराध है, आप गुरु पूजा छोड़ करके यहाँ पे आए। महाराज तो बीमार थे, महाराज को क्लास देने के लिए पहले आना था। तो ये इंटेंशन का बहुत फर्क पड़ता है कि हम कोई भी कार्य किस इंटेंशन से कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रभुपाद जी ने रखा क्यों बताइए। हमारे गुरु महाराज इस बारे में बोल रहे थे कि कृष्ण हमारी सेवाओं को तब सीरियसली लेते हैं जब वो देखते हैं कि जिन्होंने हमें मदद करी है कृष्ण भावना में आने की, उनके प्रति हम कितने कृतज्ञ हैं। तो प्रभुपाद जी से अधिक किसने मदद करी बताइए, उन्हीं की पुस्तक पढ़ते, उनकी संस्था में हम रह रहे हैं, एक एक ईंट के लिए, एक एक अन्न के दाने के लिए हम उनके प्रति निर्भर हैं, उनकी कृपा से है। तो हम लोग को सब लोग जाते ही हैं, लेकिन एक और जाकर के थोड़ा प्रार्थनामय भाव भी रखना चाहिए। अब गाने वाले का भाव क्या है वो आगे की बात है, लेकिन हमारा भाव तो कम से कम रहना चाहिए, उन शब्दों को देखना चाहिए कि क्या उसका अर्थ है। स्पेशली ब्रह्मचारियों के लिए तो जरूर बोल रहे हैं क्योंकि वो मंदिर पे रहते हैं। अब कोई भक्त तो बाहर रहते हैं, उनको साथ में जाना हो कैसे गुरु पूजा कर सकते हैं, ऐसे रास्ते में गाते हुए कह सकते हैं, लेकिन गुरु निष्ठा बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। शौचम मतलब पवित्रता, आर्जवम मतलब सरलता, ब्रह्मचर्यम अहिंसा, इसके बारे में प्रभुपाद बताएंगे तो हम आगे पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ओके, पढ़िए तात्पर्य।
यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में परांगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे।
तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रणाम करना सीखने में क्या स्पेशल है, अष्टांग प्रणाम जो है वो कैसे होता है वो सीखना चाहिए, पंचांग प्रणाम कैसे होता है वो सीखना चाहिए, कैसे होता है आप लोग भक्ति वृक्ष की पुस्तक में आप देख सकते हैं कि ओके पांव घुटने लगने चाहिए, जांघा लगना चाहिए, छाती लगनी चाहिए और हाथ ऐसे करके होने चाहिए। तो इस प्रकार से, और फिर आंखों से भगवान को देखना चाहिए, मन से भगवान का स्मरण करते हुए वाणी से भगवान का कुछ गुणगान करना चाहिए, यही चीज गुरु के ऊपर अप्लाई होती है।
ये भी सीखे कि कब प्रणाम करना चाहिए, किस परिस्थिति में। एक बार राधा रमन महाराज आ रहे थे और एक भक्त जो है उनके सामने ही लेट गया। हाँ। अब जब तक वो प्रणाम कर रहे थे तब तक वो महाराज खड़े ही रह गए, तो ये भी देखना चाहिए कि हम कर रहे हैं तो कौन सा इंटेंशन है, महाराज को सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वैष्णव को प्रणाम करने तो अजगर की तरह प्रणाम नहीं करना चाहिए। अजगर की तरह लेट गए बेचारा, वो कहीं जाना है या दर्शन करने जाना है तो दिक्कत हो, तो ये चीज है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और सब जानते हैं कि जब भगवान का पट खुला रहता है तो हम अन्य को प्रणाम नहीं करते, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। और देवताओं को भी प्रणाम कर सकते हैं ये समझते हुए कि भगवान के प्रतिनिधि हैं। ये स्वयं भगवान नहीं है लेकिन भगवान के प्रतिनिधि हैं, और देवताओं का असम्मान करना ही वैष्णव का लक्षण नहीं है, एक अपराध हो जाता है। तो इस अगर मान लीजिए गाड़ी में बैठे हैं और शिव जी का मंदिर आ गया सामने से, तो ऐसे नहीं क्यों कहां से आ गया, ये सब कभी कभी अनन्यता के नाम पर भक्तों का ऐसा करते हैं, तो ये चीज उचित नहीं है। शिव जी का मंदिर है तो फिर प्रणाम कर सकते हैं,
वैष्णवानाम यथासंभव,
वैष्णवानाम यथासंभव, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बातें हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यस, और ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मानंद प्रभु बता रहे थे, ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु को प्रभुपाद जी ने बोला कि जाओ तुम अपनी माँ को दंडवत करके आओ। तो जैसे वो गए अपने घर पे तो उनकी माता जी ने दरवाजा खोला तो दो लोग दंडवत किए, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि माता जी को दंडवत करके क्या बोलना चाहिए, तो बोले लगे नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय, खुद ही बता रहे थे यहाँ पे। तो माता जी को समझ में नहीं आया और वो सामने देख रहे, कोई आया नहीं देखा, दोनों प्रणाम कर रहे हैं, तो लोग वो चकित हो गए कि क्या करना चाहेंगे, कह रहे क्योंकि माता का बहुत बड़ा उपकार होता है, उन्होंने हमको ये शरीर दिया है और बहुत उसके उपकार को हम लोग चुका नहीं सकते, बस मैंने महाराज को पूछा था चुका नहीं सकते तो क्या करें, हम तो ब्रह्मचारी है। तो ने बोला कि आप उन्हें कृष्ण भावना देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कृष्ण भावना देने से बड़ा कोई और उपकार नहीं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी अब जाके घर में रहने लग जाए, वो नहीं कर सकता है, लेकिन उनको कृष्ण भावना देने का प्रयास करना चाहिए, ये कर सकते हैं। इस प्रकार से माता पिता का हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर माता पिता कदाचित भक्त नहीं है तो भी सम्मान करना चाहिए लेकिन सुनना नहीं चाहिए। आप कहें कि वो हरे कृष्णा मत करो या मांस खाओ तो सुनना नहीं चाहिए, लेकिन माता पिता है इसका सम्मान करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु जी को भवानी बोलते थे, आप बोलते थे और प्रणाम करते थे, भले उनकी सुनते नहीं थे क्योंकि पता है कि उनकी मति जो है असद में लगी हुई है। ये बात सूक्ष्म विचार आप समझ रहे हैं ना, आप सम्मान कीजिए भले आप बस सुनिए, कृष्ण भावना के संबंध में। यस,
इन सबका समुचित आदर करना चाहिए, उसे चाहिए कि अतिरिक्त तथा
अतिरिक्त नहीं
आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करें और आचरण में सरल बनना सीखें।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बाह्य शुद्धता का अर्थ है स्नान करना। हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमारा शरीर जो है वो ऐसा हो जाता है जैसे कफन ओढ़ा हुआ, तो इसलिए इसको आज स्नान करना चाहिए। आप लोग बात जानते होंगे, लेकिन इसीलिए प्राय से ब्रह्मचारी आश्रम में तो नियम है कि कमचा पहन करके और जो कपड़े अशुद्ध होते हैं वही पहन करके सोए, और जिस बिस्तर पे हम सोते हैं उसको टच नहीं करना चाहिए। स्पेशली आप लोग जो मंगल आरती के लिए जाते हैं, स्पेशली मंदिर में भगवान के जा रहे हैं तो जिस बिस्तर पे सो रहे थे वो कद्दा पड़ा हुआ है तब उसी पे जाके बैठ गए, फिर उसके बाद मंदिर में चले गए, ये एक अपराध है। आप पूछ लीजिएगा, किसी को भी पूछ लीजिएगा अगर आपको डाउट लगता है तो। स्पेशली जिन लोगों को ब्राह्मण इनिशिएशन हो गया है या चाहते हैं ब्राह्मण हो गया, उनको सबको ध्यान रखना चाहिए, सभी को ध्यान रखना चाहिए। एक दिन सोना की प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट ये है कि जैसे आप देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैं ये कपड़े लेकर के इस कपड़े में लेकर के मैं रेस्ट नहीं किया, अगर दोपहर मैंने रेस्ट किया है तो गमछा या कुछ और कपड़ा पहन करके हम रेस्ट कर सकते हैं, और फिर जब फिर उठे तो उसके बाद स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर ये कपड़े धारण किए, कम से कम इतना नियम पालन करना चाहिए। अब देखिए अब आप ट्रेन में है वो एक आपत्ति वाला, आपत्ति धर्म एक अलग चीज है, लेकिन यथासंभव हो सके तो साफ सुथरा रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पर्टिकुलरली अब आश्रम में रह रहे हैं तो हमसे शूद्र, हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया रहा कि हम शूद्र होंगे, दुनिया क्या कर रही है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना हम ब्राह्मणिकल कल्चर को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में आप स्वयं शुद्धि का अनुभव करेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं, और ये नेचुरल है कि खराब लगेगा, मन रिजेक्ट करेगा इस बात को। हाँ, ये ध्यान देना चाहिए, अब आपको बुखार है बीमार है तो ये नियम नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर और बीमार पड़ जाएंगे, निमोनिया हो जाए ये भी नहीं चाहते हम लोग, लेकिन ध्यान रखना चाहिए इस बात का, ठीक है। इस संबंध में आप देख सकते हैं सनातन गोस्वामी का उदाहरण, सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु ने बोला था कि आप में से मिलने के लिए आइए, तो वो बहुत लंबा रूप लेके आते हैं, क्या इतना ज्यादा वो नम्र है, वो सोच रहे हैं कि वो कहीं मेरा, मैं तो इतना शुद्ध हूं कि मेरा छाया पड़ जाएगी, मुझे देख लेंगे या छू लेंगे तो जो जगन्नाथ जी के पंडित पंडे हैं वो जाते हैं वो अशुद्ध हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी वहां बोलते हैं कि जो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जा रहे हैं उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि जो लोग अशुद्ध है उनको ना छुए, अशुद्ध है मतलब अशुद्ध अवस्था में है तो उनको स्पर्श ना करें और बहुत ध्यान रखें। एक इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे कि जो शुद्ध भक्त हैं उनको हमेशा अपराध का विचार जरूर रहता है, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा, हमेशा। यहां तक कि माता लक्ष्मी जो वैकुंठ में सेवा कर रही हैं वह भी बहुत संभल के सेवा करती हैं। याद है ना हम लोग पढ़ते हैं संभ्रम सेव्यमान, कि भगवान का कोई अपराध ना हो जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेम, प्रेम में जितना प्रेम होगा मुझे लगेगा उसे कोई दुख ना पहुंचे, मेरे से कोई दुख ना पहुंचे, मेरे से कोई दुख ना पहुंच जाए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी को एक प्रभुपाद लेटर लिखते हैं, कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी इस भावना से कि आप हमेशा सोचते रहते हैं कि आपसे कोई अपराध ना हो जाए। ऐसा एक लेटर हमने थोड़ा सा पढ़ा था महाराज जी के, उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे बात। तो ये देखना चाहिए कि हम नाम का अपराध ना कर रहे हों, कैजुअल नहीं हो इसे कहना चाहिए, या भगवान की सेवा में कोई अपराध ना कर रहे हों। ऐसे तो अपराध होता ही है लेकिन अपनी तरफ से भावना रहनी चाहिए, तो शुद्धता रहनी चाहिए। शुद्धता मैं कुछ थोड़ा बोल रहा था, और आंतरिक शुद्धता के लिए प्रभुपाद बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यस,
वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो, वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल
चीज में बताना भूल गया था, ये है जो प्रभुपाद बता रहे ना, वह कोई ऐसा कार्य ना करे, ये है आर्जवम का अर्थ है। आर्जवम का अर्थ है कि जो शास्त्र में बताया गया है उसे करना है, और जो नहीं बताया गया है, मतलब नहीं बताया गया नहीं, जो करने के लिए मना किया गया है उसको नहीं करना चाहिए, ये आर्जवम का अर्थ है। और आपको याद है ये ब्राह्मणिकल गुण है, हाँ आर्जवम एक आता है ना उसमें, तो आर्जवम का अर्थ हम क्या सीख रहे हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत नहीं हो, ठीक है,
क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है, ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं।
और ये ध्यान देना चाहिए, इसका अर्थ ये भी है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए। हर जगह ना लोग वकील बन जाते हैं, अच्छा ये तो बताया नहीं तो इसका इससे मैं लाइसेंस ले लेता हूँ, ये तो बताया नहीं इससे मैं लाइसेंस लेता हूँ, नहीं, इसका अर्थ ये है केवल संतान उत्पत्ति के लिए। अगर हम ये सोचें कि प्रभु जी ये तो खराब लग रही बातें, तो उसमें शब्द क्या है, तपस्या। तपस्या का अर्थ ही होता है कि खराब लगेगा, तपस्या करती नहीं कि आपको अच्छा लगेगा, ये बात प्रोग्राम कर लेना चाहिए। अगर कोई कहे कि जब में स्ट्रगल हो रहा है, तपस्या। भक्तों का संग करना, भक्तों को टॉलरेट करने में दुख हो रहा है, तपस्या। तपो दिव्यम तो ये जीवन जो है वो तपस्या के लिए ही है वस्तुतः। ये बहुत बात बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल बात है आपके लिए, लेकिन एप्लीकेशन में लगाएंगे ना तो आप कहेंगे अरे मुझे खराब लग रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन खराब लग रहा है, प्रीचिंग करना कौन हेडेक ले, नए नए लोगों को किताब कृष्ण भावना बुलाए, तपस्या। शुद्ध कैसे होंगे, ठीक है, पूरा जीवन तपस्या के लिए। ओके, हम दो श्लोक और लेंगे क्योंकि सब कंटिन्यूटी में है। वाणी की तपस्या बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज उसको जरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अनुद्वेग करम वाक्यम, ये पहले ही दो शब्द है ना, इसी में हम फेल हो जाते हैं, मैं तो फेल होता हूं, जम के फेल होता हूं। तो इसलिए मतलब इस श्लोक को याद करूंगा ना फिर 10 मिनट के बाद फिर गलती करूंगा, बहुत मुश्किल है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम् तप उच्यते। ओके, पहले बहुत सुंदर सुंदर अर्थ लिए हैं बलदेव विद्याभूषण जी, कहते हैं अनुद्वेग वाक्यम का अर्थ है कि ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिसके द्वारा दूसरे के हृदय में भय उत्पन्न हो। क्या है अनुद्वेग कर्म का अर्थ, दूसरे के हृदय में भय उत्पन्न हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माइक बोले, अभी अभी आएगा, अभी आएगा, घबराई में। उसके बाद वो बोल रहे हैं सत्यम का अर्थ है जो वाणी है वह शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए। संस्कृत में क्या बोल रहे हैं, प्रमाणिकम, ठीक है। उसके बाद सुनने वाले को बहुत अच्छी लगनी चाहिए, प्रिय। ऐसे नहीं बोलना चाहिए आप लोग, खैर मैं बोलना भी नहीं चाहता कभी कभी शास्त्रों की बहुत कठोर बातें हैं और अगर संबंध है तो बोल सकते उनका उपकार करने के लिए, और जब कभी बोले तो तुम मत बोलिए, आप मत बोलिए, हम बोलिए। हम अगर भोगों में लगे हुए हैं तो हमारा हमको शास्त्र बोलता है कि हम लोग गधे कुत्ते और ऊंट की तरह, तो उसको उतना बुरा नहीं लगेगा। अगर आप बोल देंगे तुम जो अगर भोग में लगे हुए हो तो तुम गधे बैल और सुअर की तरह हो, तो उसे बहुत खराब लगेगा। तो सत्य बोल बोल सकते हैं, लेकिन हम उपयोग कर लीजिए, थोड़ा मीठा हो जाएगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन अंततो गत्वा हितम, जो सुनने वाला है उसकी हित कामना से होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए प्रभुपाद जी कितना कठोर बोलते हैं, बहुत बार कठोर बोलते हैं लेकिन हित कामना से। सुखदेव गोस्वामी कितना कठोर बोल रहे लेकिन हित कामना से। जैसे एक डॉक्टर क्या कहते हैं सर्जरी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके हृदय को खाड़ देना चाहता है, हृदय के जो ब्लॉकेज है उसको निकाल देना चाहता है।
धृतराष्ट्र को इतना डांटते हैं कि
कौन डांटते हैं,
विदुर जी धृतराष्ट्र को, कि तुम भीम कर्ध कुत्ते जैसा तुम खा रहे हो,
यस
तुमने जिसको मारा, तुमने जीवन में जिसका षड्यंत्र किया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती।
यस आप देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे मूलभूत बात क्या है, हितम। और उनका हित हुआ ना, उनकी आसक्ति कटी, जो हृदय के ब्लॉकेज थे वो कट गए। और बहुत अच्छी बात भागवत श्लोक है, मुझे पूरा याद आ रहा है, एक चीज उसमें लास्ट लाइन आती है, उक्त भी। साधु संघ में जब व्यक्ति रहता है तो साधु की वाणी, उसकी जो उक्ति है, जो बोल रहे हैं, उससे हमारी आसक्ति कटती है। इसके लिए लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार परम सत्य के बारे में बोलते हैं, तुम्हें कृष्ण के शरणागत होना चाहिए, जैसे यहां हम पढ़ रहे हैं, और लोग सुनना नहीं चाहते शास्त्र, ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, इसीलिए लोग नहीं पढ़ना चाहते। वो चाहते हैं कि जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलते रहना चाहिए, यही मेन बात है। आप लोगों को याद हो शास्त्र की विधि को आलस्य में ताक देना, यही बात थी ना। अरे कौन कह रहे, सब क्यों बातें बोल रहे, ना सुनते तो अच्छा रहता, जीवन जिंदगी चलती रहती बढ़िया से। इसीलिए बहुत लोग भगवदगीता नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। साथ साथ वो कह रहे हैं अभ्यासनम, अर्थात वेदों का क्या लिखा है इसमें, उच्चारण होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग गीता का पारायण कर रहे थे या अभी बोल रहे हैं, इससे हमारी वाणी शुद्ध होती है। ये भी ध्यान देना चाहिए, बहुत सिंपल है, जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, ऐसे शरीर वाणी और हमारा मन इन तपस्याओं के द्वारा शुद्ध होता है, और फिर हमारा सत्व शुद्ध होता है। अगर सत्व शुद्ध होगा तो फिर भक्ति में हमें सुख प्राप्त हो। तो सारा हमारे पास में है, वांग्मयम का मतलब है वाणी का। हाँ पढ़िए, अनुपम कृष्ण बाबू पढ़ना चाहते हैं, अनुवाद पढ़िए।
सच्चे भाने वाले हितकारी हितकार तथा अन्यों के शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है।
और आप देख लीजिए प्रभुपाद जी कितनी बार बोलते हैं कि मेरा एक ही कंप्लेन, क्या बोल सकते हैं,
शिकायत
है मेरे अनुयायियों से कि वे मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते। कितना अमेजिंग है ना। और कठोर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य अगर केवल खाएंगे और सोएंगे तो वो पतित हो जाएंगे। नहीं, वो कहते हैं कि अगर वह आंदोलन की पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं तो केवल खाएंगे सोएंगे और पतित हो जाएंगे। क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखना चाहिए, हम कोई भी तपस्या, पर्टिकुलरली सात्विक तपस्या करने के लिए प्रेरित होंगे ज्ञान के द्वारा। जब भक्ति का ज्ञान होगा, भगवान की भक्ति के बारे में समझ में आएगा, तब व्यक्ति प्रेरित हो, उसको प्रेरणा मिलती है कि इस तपस्या को करे, भले उसका मन उस पर ना लगे। इसलिए इसीलिए शास्त्र को रोज सुनना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बोलिए
हमारे हृदय जो है पत्थर की तरह है और सांस जो है वो रस्सी की तरह है, रसरी आवत जावत है, उससे जो है वो सिल पे निशान पड़ जाता है। तो इस तरह हमारे हृदय में ये बात धंसेगी कि भगवान ही परम सत्य है और हम बार बार पढ़ेंगे।
और इसके संबंध में एक वक्त ने बहुत अच्छा बोला था कि हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा मक्कार हूं, लेकिन अगर मैं रोज शास्त्र में क्लास में बैठता हूं तो कम से कम मैं सुन रहा हूं कि सही क्या है। तो हो सकता हो किसी दिन मेरे को समझ में आ जा रही नहीं है तो बहुत गलत कार्य कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुनने से बहुत फर्क पड़ता है, सुनने से ही दुर्मति जाती है। पढ़िए तात्पर्य।
तात्पर्य, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे के मन शुद्ध हो जाए।
ये है ना मुश्किल, एक भक्त ने मुझे बहुत अच्छा वो फोटो भेजा, उसमें ऐसे लगा था दिमाग का एक तार था उसमें, और यहाँ स्पीच ना जो जीव होती है उसका कनेक्शन से होता ना, एक मेल फीमेल स्विच होते है ना उसमें, कह रहे इसको कनेक्ट करके बोलिए तो पहले सोचिए कि क्या बोलना है और फिर बोलिए। और इसमें हम लोग कितना छोड़ देते हैं। आज कौन बता रहा था, हाँ बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि वाणी से ही लक्ष्मी आती है और वाणी से ही विद्या आती है, वाणी से ही बंधु बांधव आते हैं। एकदम थोड़ा सा गलत बोल दीजिए सारे संबंध खराब हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी थी कि सारा कुछ वाणी पे ही स्थित रहता है, बहुत अच्छी बात लगी थी। तो अगर प्रेम से मीठा करके बोलिए तो सब लोग खुश हो जाते और एकदम हृदय ठंडा हो जाता है। वैसे मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन मैं अपने को शिक्षा दे रहा हूं, जरूरी नहीं है। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे अगर आपको किसी को बोलना है कि आप आश्रम में नहीं रह सकते तब भी बोलिए, उसको खराब मत बोलिए, बिकॉज अल्टीमेटली हर जीव भगवान का अंश है और उस पर उसके प्रति किया गया दुर्व्यवहार भगवान को पसंद नहीं करता। अभी कोई असुर है बिल्कुल तो फिर वे डू द नीडफुल जिसे कहना चाहिए, लेकिन प्राय हमें एटलीस्ट भक्तों को सम्मान देना चाहिए। अरे बहुत बड़ा हमारा मेरा, अब मैं हम नहीं कहूंगा, मेरा बड़ा दुर्गुण है कि मैं कहीं कहीं बहुत बार मैं देख रहा हूं कि भक्तों को सम्मान देने में हम नीचे रह जाते हैं, मैं नीचे रह जाता हूं। और इसीलिए हरि नाम में रुचि अभी नहीं आ रही। सकल सम्मान को रे थे शक्ति देहो नाथ जथा जथा तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हो बेहता। कोई और ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं है, सभी को सम्मान देना जैसा योग्य है वैसे सम्मान देंगे तो नाम में रुचि प्राप्त हो जाएगी। ये कोई हम अपनी मनगढ़ंत बात तो नहीं बोल रहे, तो ये अपने हृदय में देख लेना चाहिए कि हम असम्मान नहीं करें। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कंडीशन सोल के लिए सम्मान की इच्छा रखना तो बहुत ईजी है, सम्मान देना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये चीज है कि इसको करते रहे कम से कम वाणी के स्तर से करते रहे कॉन्शियस हो जाएं, और किसी से गलत बोल जाए तो माफी मांग लें, तो इस प्रकार से हम लोग निश्चित रूप से प्रगति करेंगे। ये हम लोग तब समझ पाते हैं जब हमारा हृदय किसी की अन्न की वाणी से शुद्ध हो, तब समझ में आता है कि बुरा बोलने से कितना कष्ट होता है। इसकी फटी ना खुद की बिवाई हो जाने के पीर बराई है ना, तो बड़ा डेंजरस। जब हम दूसरे को कुछ कष्ट कारक चीज बोलते हैं ना तो हमको कुछ लगता नहीं है, और हम ये नहीं देख रहे हैं जब हम दूसरे को बोल रहे हैं तो हमको खुद को भी सुनाई पड़ रहा है। आप लोग, आप तो अच्छे भक्त हो, मैं अपने कोई सिखा रहा हूं लेकिन ध्यान देना चाहिए कि ये जितना हम करेंगे उससे भगवान प्रसन्न होंगे। देखो ये सारी बातों से भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे तभी तो ये बात बोलना चाहिए ना, नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात जिससे स्पेशली भक्तों को दुख नहीं होना चाहिए। हमारे पास अधिकतर लोग भक्त हैं, भक्तों के साथ डील ही नहीं करते। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम तो भक्तों के, हमारे लिए दूसरा कौन है, मेरे लिए आपके लिए दूसरा कौन है, मैं हूं, ये हैं जो आसपास बैठे हुए, ऐसा तो नहीं कोई कर्मी आपके बगल में बैठा हुआ। तो इसलिए परम पूज्य कदम कानन महाराज बात में बोल रहे थे, एकदम ऐसे रास्ते में मिले ऐसे बोल रहे थे कि एटलीस्ट वी शुड पे रेस्पेक्ट टू डिवोटीज, कम से कम हमें भक्तों को तो सम्मान करना चाहिए। मुश्किल है, हम कहां बताइए शास्त्र में महाप्रभु क्या बोल रहे, जिसने एक बार किसके मुंह से कृष्ण निकल गया उसे सम्मान करो, भले ही उसमें और दुर्गुण हो सकते हैं, आप पास जाकर बहुत संग मत कीजिए लेकिन मानसिक रूप से सम्मान कीजिए। यही बात रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि नहीं, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं, हम पालन नहीं कर रहे हैं उसका। अब यहां पे मैं हम बोलूंगा क्योंकि बाकी बहुत सारे दुर्गुण दिख रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि ये भक्त व्यक्ति हरिनाम कर रहा है, एक नाम उच्चारण करने वाले का, और जो 16 माला कर रहे हैं और बाकी कुछ कर रहे हैं तो फिर वो क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। हमें सम्मान देना, अगर हम उनकी अथॉरिटी नहीं है ठीक करने के लिए तो हमें उनकी निंदा नहीं करनी। हम, मुझे, मैं सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्किल ऑफ कंसर्न, माइक पे बोलिए। ये मैं स्पेशली ठहर रहा हूं क्योंकि वाणी का जो वेग है ना इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है।
दूसरों को देख, दोष देखने का है कि हम चाहे मधुमक्खी बन सकते हैं या मक्खी बन सकते हैं, बी या हनी बी, तो अब हमें डिपेंड करता है कि हम अगले का गुण देखें या फिर डिस्क्वालिटी देखें।
और मैं कठोर बोलूंगा, भालदर महाराज बड़ा अच्छा बोले कि माँ अपने बच्चे का मल हाथ से साफ करती है, जीभ से नहीं साफ करती, करती है नहीं करती है। तो हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो अपनी जीभ से उसका मल साफ कर रहे हैं, ये सारे पाप उसके मेरे सर पे आ जाएंगे, तो हम जीभ से उसका मल साफ कर रहे हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे बोला था, क्या जरूरत है। हाँ, अगर आपकी ऐसी पोजिशन है कि आपके अंडर में जो भक्त है उनको आपको शिक्षा दे रही है तो हम बोल सकते हैं, गुरुजन प्रभु संबंध में कहते हैं आपको जब गुस्सा आए तब मत डांटिए। अरे प्रभु जी ये क्या मतलब है? तो मजा ही नहीं आएगा जब गुस्सा आए तब नहीं डांटो तो कैसे मजा आएगा? क्योंकि हम लोग का ये बहुत मन में रहता है मैं इंचार्ज हूं ये हूं वो उसको उड़ा दूंगा, हम खुद ही उड़ जाएंगे इस चक्कर में। ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। एक बार एक भक्त बता रहे थे यहाँ पे ब्रह्मचारी थे, उनको उनके इंचार्ज ने थप्पड़ मारा था, बाद में उसकी शादी हो गई इंचार्ज की। वो सोच रहा था कि मैं नया एनडीपी करा न्यू डिवोटी है इसको मैं बस कुछ भी कर सकता हूं। तो ये बहुत खतरनाक है, प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं, ये बहुत डेंजरस। भगवान के प्रति भक्तों के प्रति अपराध बहुत डेंजरस। मैं तो भक्तों की बात कर रहा हूं, अन्यों की तो आगे की बात छोड़ दीजिए, एटलीस्ट डिवोटीज ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई सेवा कर रहे हैं और हम सेवा नहीं करना चाहते। इंचार्ज बोले क्या आप सेवा कर सकते हैं? प्रभु जी आप मुझे शुद्ध कर रहे हैं भैया आप शुद्ध कर रहे हैं। हाँ देखिए मैंने तो ठेस लग रही है, सेवा करने के लिए क्यों बोला? ऐसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है।
Okay. संदेह है
आपको लगता है, लेकिन सेवा तो ऐसे भक्त भी हैं। हमारे यहाँ पे एक सुतोदेव प्रभु थे बालिका आपके संग रहते थे, मैंने समझता हूँ उनके मुंह से कभी कोई ऐसी बात निकली होगी जिसे कोई शुद्ध हुआ हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भक्त, मैं बहुत अच्छे भक्त, मतलब कभी ऐसा उनकी वाणी मुझसे निकली ही नहीं कि किसी को कोई शुद्ध हो जाए कि गुस्सा हो जाए, कभी हो ही नहीं सकता। बहुत और टेंपल प्रेसिडेंट है, इतने सुंदर, मैं तो उनका स्मरण करके सोचता ऐसा भक्त बन गया तो जीवन उद्धार हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भक्त, नेचुरली इतने नम्र हम्बल व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छा। हमारे आश्रम में भी आप देखो हमारे जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं वो किसी को शुद्ध करने वाला वचन नहीं बोलते, कितना प्रेम से सबको डील करते हैं, प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। इससे हम लोग को भी सीखना चाहिए कि हम लोग को भगवान हम पे कृपा करिए, हमारी वाणी से जहर ना निकले, खाली फूरी कांटे ना निकले, ब्रह्मास्त्र ना निकले, केवल भगवान का नाम निकले या फूल निकले, है कि नहीं? यस पढ़िए, ये बहुत डिस्कशन वाला टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा था। यस पढ़िए।
निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले।
इंटरेस्टिंग है, जैसे कि महाप्रभु भी कभी कभी डांटते हैं, ए ये जगह जगदानंद पंडित जी को डांटते हैं, बट रिलेशनशिप है तो डांट सकते हैं। प्रभुपाद जी भी डांटते थे, लेकिन ये नहीं कि अब सबको डांटते फिर रहे, केवल जो उनके अंतरंग शिष्य थे उनकी हित कामना से डांट रहे थे, और वो जानते थे कि हाँ प्रभुपाद जी उनके हित के लिए कर रहे हैं। माइक बोलिए।
तीन दिन पहले की बात है कि मेरे सामने एक व्यक्ति नए व्यक्ति जप कर रहे थे और वो मोबाइल देख रहे थे, व्हाट्सएप देख रहे थे। बहुत देर तक मैं टॉलरेट करने की कोशिश किया, मैं गुरु भी नहीं हूँ इंचार्ज भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता रहा नहीं कि फिर मैंने उनको डांटा कि आप मोबाइल में क्यों कर रहे हो, आप जपा करो अच्छा से और नहीं सही से नाम लेना उच्चारण करो।
देखिए
बाद वहां से वो चले गए, मैंने गलत किया?
नहीं नहीं आपने सही किया। देखिए पॉइंट ये है कि सही किया मतलब अब किया तो सही, लेकिन कैसे किया उस पर आप जानते हैं, आप उनको प्रेम से बता सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी आपने देखा होगा जब मैं लोग सो रहे होते हैं तो मैं प्रेम से बोल देता हूँ कि भाई आप कृपया हाथ ऐसे करके रखिए, उसके बाद अगर उसको थोड़ा उद्विग्न होता है तो हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, फिर दोबारा नहीं बोलते उसको ना। आप लोगों को तो मैं पक्का करके बोलता हूँ क्योंकि हम ना पे है कि नहीं, आप लोगों को तो हमारा अधिकार में है इसलिए बोल देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें मेरा हित काम नहीं है, अब तो किसी को बोलना भी नहीं पड़ता, सब लोग अपने आप ही करते हैं, है कि नहीं? ठीक है,
यही वाणी की तपस्या है।
इससे पहली वाली लाइन का अर्थ ये है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस सर्किल ऑफ कंसर्न, मतलब जिस घेरे में आपके द्वारणी से लोग प्रभावित हो उनको बताइए। हर व्यक्ति को शिक्षा देने की जरूरत नहीं, जो आपको सामने दिख गया उनको पता जब कैसे करना चाहिए, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपसे प्रभावित होते हैं, जो आपको गुरु बुद्धि है आपके प्रति, उनको बताना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो प्राय लोगों का ग्लास जो है ना उल्टा हो जाता है, जो सोचेंगे कि आप क्या जानते हो, आप मुझे क्या बताओगे, तो फिर नहीं बताना चाहिए, क्यों झगड़ा होता है फिर उससे।
इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। अध्यात्मिक
प्रलाप का अर्थ क्या है? प्रलाप करने से भक्ति डाउन होती है, याद है ना? प्रलाप का अर्थ है मायावादी चर्चा, प्रलाप का अर्थ है भोग की चर्चा, स्त्री चर्चा, ये सब ग्राम्य वार्ता, ये सब प्रजल में आता है। यस
अध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो,
यह है सत्यम का अर्थ। यस
उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए।
जैसे आप चेतन चेतामित पढ़ेंगे, इतना सुंदर ग्रंथ है, वो कुछ बात बोलेंगे, सिद्धांत बोलेंगे, तुरंत शास्त्र से कोट करते हैं। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत बात है, एक भी बात वो बाहर नहीं बोलते। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है इस मामले में, बहुत सुंदर। यस,
उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए।
एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात आज शाम की क्लास में मैंने सीखा कि आप अपनी कुछ अनुभूति अगर दे रहे हैं और वो शास्त्र से मैच करती है तो अपनी अनुभूति भी दे सकते हैं। जैसे हमारे क्या है कि भाई भगवान का नाम बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत सुख होता है, हमने कभी कभी अनुभव किया है सुख, तो अब ये कोई शास्त्र से अलग बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात कभी कभी हम बता भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अब शास्त्र की से अलग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन शास्त्र के वो मतलब फॉलोअप क्या कह सकते हैं, उसकी धारा में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। यस, जैसे कहें कि हरे कृष्ण मंत्र करने से यहाँ पे एक लाल रोशनी दिखाई पड़ती है, तो अब ये सब जो है मनगढ़ंत बात है, ये सब बोलना नहीं चाहिए। हाँ जी,
इसके साथ साथ पर बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोत्तम लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैद्य साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कही जाती है।
एक मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, एक श्लोक और पढ़ लें तो हमारा वो मन की तपस्या हो जाएगी, बहुत अच्छा हो रहेगा, ठीक है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्
तपो बंद हो गया। तपो मानसमुच्यते मनः प्रसाद का अर्थ क्या है मैं देखना होगा। मनः प्रसाद का अर्थ है मन की तुष्टि। तो वो कह रहे हैं, पहले बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं मनः प्रसाद का अर्थ है, वो ये कह रहे हैं कि मन जब इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो वह अधिकाधिक डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब का मतलब क्या हो गया, शुद्ध हो जाता है। तो मन को इंद्रिय भोग के विषयों से खींचना, मन एक, आपने देखा है कभी कभी लोग रोड पे कुत्ते ले जाते हैं तो कुत्ते में से गंदी जगहों पे जाते हैं, तो ये मन का स्वभाव है, इससे आश्चर्यचकित नहीं होना, लेकिन खींच करके उसे वापस कृष्ण में लगाना। इसे भगवान बोलते हैं चेतसा ना अन्य गामिना। तो मन की तपस्या का पहला क्या सीख रहे हम लोग कि मन को इंद्रिय भोग के विषयों से खींचना, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं स्वामित्वम अर्थात मन से क्रूरता की भावना को निकाल देना और लोगों के सुख की कामना करना, ये बहुत अच्छा है। ये स्वाभाविक रूप से होता है, अगर हम प्रचार करते हैं, आप प्रचार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से होता है काश ये लोग हरे कृष्ण मंत्र करें, भगवान की भक्ति करें और आगे जाकर वो सुखी हो जाए। और आप देखेंगे इस प्रकार की भावना कितनी अच्छी है, भले हम कुछ कर ना सकें लेकिन हम खाली इस प्रकार से अगर सोचते भी हैं तो बहुत हमारा लाभ होगा। और उसके बाद मौनम का अर्थ है आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म अनात्मा का विवेक होना चाहिए, भोगों में नहीं मशा लगना चाहिए। उसके बाद फिर वही बोल रहे हैं आत्म विनिग्रह का अर्थ है इंद्रिय विषयों से खींचना चाहिए, विनिग्रह का अर्थ है कंट्रोल करना, ये नहीं कि आप भोग के बारे में सोच रहे हैं तो हम सोचते ही रहे। भूरिजन प्रभु संबंध में बड़ा अच्छा बोलते हैं अपने जप की बुक में, कहते हैं मन में अगर मन भोगों में जा रहा है तो अंदर से चिल्लाना चाहिए नो, समझ रहे, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को ऐसे बोलते हैं नो नो टॉमी उधर मत जाइए, तो उसी तरह से मन को डांटना चाहिए, क्यों भाई अभी जब के समय तुम्हारे यही करना है, बस यही करना है तुमको, तो वैसे डांट थोड़ा डांटना पड़ता है मन को। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं फोर्स यूज करना पड़ता है, नहीं तो मन तो हमेशा बुरी वस्तु में जाता है। बहुत अच्छा बात उन्होंने बोली। भाव संशुद्धि का अर्थ क्या है, वो कह रहे हैं भाव शुद्धि का अर्थ है दूसरों से धोखेबाजी की डीलिंग से बचना चाहिए। वन शुड बी फ्री फ्रॉम डिसीट इन डीलिंग्स विद अदर्स। बहुत सुंदर बात है, किसी भी संबंध में अगर हम अपने भक्तों के संबंध की बात करें, कम से कम इतने भक्तों के संबंध बात करें, धोखेबाजी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से आपका अच्छा संबंध हो, कृष्ण तो बहुत बड़ी बात होगी, वैष्णव से अच्छा संबंध हो, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। भक्ति में कपट सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि भगवान को कपट पसंद नहीं है, अपितु जो सत्य रूप से सत्यनिष्ठ होकर भगवान का भजन करता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान तो हृदय में बैठे हुए, जो वाकई भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के लिए जप कर रहा है, मान लो प्रभुपाद ने 16 माला बोला है तो 16 माला कर रहा है भगवान जानते हैं, और भगवान को प्राप्त करने के लिए चाह रहा है वो भी जानते हैं, चार नियम का पालन कर रहा है भगवान जानते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। इसके एक अच्छी बात बोली जाती है कि सच बोलने में फायदा ये है कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम आपने क्या बोला था, और झूठ बोलने में हमेशा ही रहता रहता है मैंने पिछली बार क्या बोला था, एडजस्ट करते रहो और हमारा जीवन बहुत खोखला हो जाता है। तो भक्तों को चाहिए इस बात से कि हम लोग जितना संभव हो सके सच बोलने का ही प्रयास करें, और कभी कभी हम लोग अर्ध सत्य बोलते हैं, अर्थात किसी से सुन लिया किसी के बारे में बस फैलाना चालू कर दी, ये भी वेरीफाई नहीं किया, सत्यापित नहीं किया कि सच बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे। ठीक है, मैं अब इसको पढ़ता हूँ। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तात्पर्य, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, सॉल्यूशन ये है कि जब हम शास्त्र में अपने मन को लगाए रखते हैं तो वो जिज्ञासा भोग की जिज्ञासा की बजाय भगवत जिज्ञासा में परिणत हो जाती है। ये यहाँ पे क्यों लिखा है, शास्त्र में ये बात क्यों लिखी गई है, इस पे क्या अर्थ है, जैसे अभी हम देखो चर्चा कर रहे हैं ना, अब आप लोगों को वापस इस पे विचार करना चाहिए कि जो आपने पढ़ा उसका अर्थ क्या है, किन किन चीजों को मैं अपने जीवन में अप्लाई कर सकता हूँ, डिस्कस करना। इसके द्वारा मन बड़ी आसानी से इंद्रिय विषय के भोगों से विरत हो जाता है, उसे इस तरह परिशोषित। यही ऑन हो सकता है स्पीकर, ऑन भी जाता, देखिए ट्राई कीजिए, ऑन हो सकता है। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे, सौम्यत्वम, ठीक है, और मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। यही बात मैं कर रहा था कि सद विचार कहां से मिलेंगे, सुनेंगे, तो जब सुनेंगे अच्छे से तो वैसे विचार हमारे चित्त में चलेंगे। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। आत्मविनिग्रह, अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रखकर के ही मन को तुष्टि, मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है जो नेक्स्ट देखिए। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त हो जाता है। ये इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। जितना हम लोग, सामने लिखा है, जितना हम इंद्रिय भोग के बारे में सोचेंगे उतना ही अधिक अतृप्त हो जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जिस दिन आपने सोच लिया कि फीस्ट है तो उस दिन आप सोचेंगे, हर आदमी सोचता है आज मैं खूब खाऊंगा, ये बना होगा, वो पकेगा, ये होगा, और आप देखेंगे फीस्ट के बाद प्राय अगर इस भावना से हम फीस्ट खा रहे हैं हम असंतुष्ट हो जाते हैं, और अगर लगता है कि भगवान की कृपा से जो मिला है उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा तो अधिक संतुष्टि होती है। तो खाने में संतुष्टि नहीं है, भावना में संतुष्टि है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने को सूक्ष्म रूप से देख लेना चाहिए इस बात कि कभी कोई मान लो गृहस्थ भक्त घर में भी प्रसाद के लिए इन्वाइट किया, आप सोचे हाँ आज पुआ पकौड़ी मिलेगा, ये होगा वो होगा, हो सकता माता जी को खाना बनाना ना आता हो तो सिंपल से मिल जाए, तो उस पूरे विचार में हम असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए जितना इंद्रिय तृप्ति के बारे में कोई सोचेगा, मैं बस हल्का उदाहरण ले रहा हूं, और कोई भी इंद्रिय तृप्ति है इसमें जितना हम अपने मन को आविष्ट करेंगे उतना हमारा मन असंतुष्ट रहेगा। तो ये हम सीखना चाहिए प्रभुपाद के पास, इसलिए ट्रेन करना चाहिए भगवान की भक्ति में संतुष्ट हो जाओ भक्ति करके। इस वर्तमान युग में हम मन का व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। और आप देख सकते हैं पूरे समाज में बॉम्बार्डमेंट है, बॉम्बार्डमेंट समझते हैं, ये प्राप्त करोगे तो सुखी हो जाओगे, वो प्राप्त करोगे सुखी हो जाओगे, और मन ऐसे ही इच्छा करने लगता है, और इसी कारण से लोग अधिक असंतुष्ट हैं। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए। देखिए अभी ये बात बोल रहा था ना मैं, क्योंकि ये संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। भागवत का तो सिद्धांत यही है कि जो भागवत सुनता है उसके मन में क्या प्रभाव होता है, शोक मोह भया भय, शोक चला जाता है, मोह चला जाता है, भय चला जाता है, सब मन में तो अनुभव करते। ओके, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए। क्या था ये था भाव संशुद्धि, और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। ये तो हमने चर्चा कर लिया ऑलरेडी। मौन का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। क्योंकि वह हमेशा कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सोचता रहता है। मन अनिग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना है, तो स्पष्ट है, सब हम बोल चुके हैं इसको। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन या भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। यह सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो माँ जहाँ रुकते हैं, काफी कुछ सीखने को मिला है, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।